आज का प्रातः क्लास है 28/8/1965। बारिश तो हर वर्ष पड़ती है, वो होती है पानी की बरसात, दूसरी फिर है बेहद के ज्ञान की बरसात। जो बरसात कल्प कल्प होती रहती है तो ये दुनिया पतित, नरक है, इसको विषय सागर कहा जाता है। जिस विषय सागर या विकार से वा कहो काम अग्नि से सब जलकर काले बन पड़े हैं। आग लगती है तो आग में मनुष्य पहले काले बन जाते हैं, तो इस काम अग्नि से भी भारत काला हो गया है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर के बच्चे काम अग्नि से सब काले हो गए हैं, मैं फिर एक ही बार आता हूँ, सबको ज्ञान बरसात से गोरा बनाने के लिए। इस रावण राज्य में जिसमें काले हो गए हैं, इन सब को फिर पवित्र बना देता हूँ। फिर मूल वतन में तो कोई भी अपवित्र नहीं, पतित नहीं रहते। अभी ये दुनिया पतित है तो सबके ऊपर ज्ञान बरसात चाहिए। ज्ञान बरसात से फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती है कि हम काले पतित बन गए हैं। सतयुग में तो सारी दुनिया पावन रहती है, वहां पतित का नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, परंतु इसे क्षीर सागर का अर्थ मनुष्य नहीं समझते हैं। तुम तो समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण ही हैं, जो खीर खंड रहते हैं। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती थी, ग्रत बेहद का याद का है, ग्रत शुद्ध चीज होती है। अब घी की नदियां बहती हैं तो जरूर इस दुनिया में कभी खारा सागर भी चाहिए। ये विद्वान पंडित आदि ने तो चटके बनाए दिए हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं विष्णु भगवान, अब तुम तो विष्णु को भगवान नहीं कह सकते हो। कहते हैं विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं ना, परंतु विष्णु भगवान नमः नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा अथवा विष्णु भगवान नहीं है। हाँ, शिव परमात्मा ही नमः शोभता है, शिव के साथ शंकर को भी मिलाए देते हैं और कोई देवता को नहीं मिलाते। ابھی تم بچوں کو روح سے نہیں ملی ہے کہ آخرین بھگوان کا روپ کون ہے. کہا بھی جاتا ہے اونچتے اونچے شری شری 108 کی رودرمالا. اب رودر کس کا نام ہے؟ میرا نام تو شیو ہی ہے, میری بندی کا نام شیو ہے, وہ تو کبھی بدلتا نہیں ہے. جب شریر بدلتے ہیں تو نام بھی بدل جاتا ہے, تو رودر مالا کہا جاتا ہے. اوپر میں ہے پھول, پھر یگل دانے کو میرو کہا جاتا ہے. وہ میرو لکشمی نارائن ہی کہتے ہیں. واستو میں برہما سرسوتی کو یگل نہیں کہا جاتا, سرسوتی تو برہما کی بیٹی ہے. تو یہ 108 کی مالا شدھ مالا ہے. تو میرو پھر لکشمی نارائن کو کہا جاتا ہے. یگل من کا ہے نا, پرنتو انہوں کی سنتان بھی تو ہوگی نا, یہ بات تو کسی کو پتا نہیں ہے. ابھی تم بچے وشے ساگر سے نکلتے ہو, اس وشے ساگر کو کالی دہ بھی کہا جاتا ہے. اس کالی دہ میں سرپ سرپنی رہتے ہیں, سورگ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دکھاتے ہیں شاستروں میں کہ ناگ کے اوپر ڈانس کیا, یہ ہے کیا, یہ سب دنت کتھائیں ہیں. نام کس کا ڈال دیا ہے؟ کرشن کا نام ڈال دیا ہے. بلائنڈ فیتھ سے گڑیوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں, بہت بہت دیویوں کی بھی مورتی بناتے ہیں. ان مورتیوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, کتنی گڑیاں بیٹھ بناتے ہیں. لکشمی, کالی, سرسوتی, بہت بہت گڑیاں بناتے ہیں. دھنوان لوگ تو بہت خرچہ کر دیتے ہیں دیویوں کے سنگار کے اوپر. کوئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں سچے سونے کے زیور پہناتے ہیں, کیونکہ برہمنوں کو دان کرنا ہوتا ہے. برہمن جو پوجا کراتے ہیں بہت خرچہ کرتے ہیں, دھوم دھام سے دیویاں نکالتے ہیں. یہ سب ہے کہاں کی یادگار؟ ضرور سنگم یوگ کی یادگار ہے. جیسے مسلمان لوگ تازیہ نکالتے ہیں تو یہاں پھر دیویاں نکالتے ہیں. آگے تو پھر ڈبوئے دیتے تھے, آج کل شاید رکھ لیتے ہیں, کیونکہ خرچہ تو بہت ہو جاتا ہے نا, تو گڑیوں کو بھی ڈبوئے دیتے. کریٹ کر کے پھر پالنا کر کے پھر کیسے سنگھار کر دیتے ہیں. इसको कहा जाता है गुड्डी पूजा। कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की ही यादगार है। जो एडवांस के बच्चे हैं जानते हैं है ना कि कैसे गुणियों की पूजा की थी, कितना धन माल लुटाया, फिर बोड़म बोड़ कर देते हैं, ज्ञान जल में ही डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड्डी पूजा। तुम भाषण में भी समझा सकते हो कि भक्ति मार्ग में जड़ गुड़ियों को बना करके कैसे यादगार बनाते हैं। ये अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अब सूंड वाला पूंछ वाला मनुष्य तो होता नहीं है। ये पूंछ तो काम विकार की निशानी है, देह अभिमानी की निशानी है। ये देह अभिमानी की सूंड भी लटकती रहती है। कितने चित्र बैठ बनाए हैं। ये चित्र सब चरित्र की यादगार हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही पैसा खर्च करते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमको अभी हम कितना साहूकार एकदम विश्व का मालिक बनाए देता हूं। ये बात आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं ही बैठ समझती हैं। देह अभिमानी तो समझ ही नहीं सकते। ये भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वो ही चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे रुलेंगे तो होंगे खराब। ऐसे ऐसे फिर दास दासियां बन करके कम पद पावेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बनाए रहे हैं। वो लोग तो शिव शंकर का अर्थ ही नहीं जानते हैं। क्या अर्थ बताते हैं? है वो भक्त लोग शिव शंकर का क्या अर्थ बताते हैं? भक्त ये समझते हैं कि शिव शंकर एक ही है, परंतु शिव अलग है शंकर अलग है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ ही है विनाशकारी। अब दोनों को मिला करके एक कर दिया है, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, परंतु शंकर तो झोली नहीं भरते हैं। शंकर झोली भरते हैं या शंकर के अंदर शिव झोली भरते हैं? शिव परमपिता परमात्मा कहा जाता है, तो परमात्मा ही झोली भरते हैं। शंकर तो विनाश करने वाला है, वो तो सब की झोली खाली कर देगा। अभी बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो वो अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने के हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण करके फिर अच्छी रीति औरों को धारण कराना है। दान तो करना पड़े ना। बाबा ने समझाया है, अभी दान करना है तो आसामी को देख करके करो, जिनकी सुनने की ही दिल नहीं होती है उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। देखो शिव के पुजारी हैं, देवताओं के पुजारी हैं, ऐसों को कोशिश करके दान देना है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम हरेक को रूप बसंत बनाना है और खुद भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है, उनका रूप कोई ज्योतिर्लिंगम नहीं है कि सिर्फ ज्योति का लिंग है, नहीं, स्टार है वो, परमपिता परमात्मा है, परमधाम में रहने वाला, परमधाम परे ते परे है। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, तो वो परमात्मा है। 28-65 की वाणी का दूसरा पेज, यहां जो दुखी आत्माएं हैं वो परमात्मा को बुलाती हैं। उस परमात्मा परमपिता को सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, वो सुप्रीम भी बिंदी मिसल है, ऐसे भी नहीं कि उनका कोई नाम रूप नहीं है। बिंदी मिसल का अर्थ नाम रूप उड़ाए देना नहीं, क्या है, बिंदु रूप स्टेज की बात है, तो नाम रूप तो हुआ ना, ज्ञान का सागर है, सत्त चित्त आनंद स्वरूप है, पतितों को पावन बनाने वाला है। परंतु ये बातें दुनिया वाले नहीं जानते हैं, उनसे पूछो परमात्मा कहाँ है, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। अरे वो सर्वव्यापी है तो उनको पतित पावन कैसे कह सकते, पतितों को पावन बनाने वाला तो कोई एक होगा ना, कुछ भी समझते नहीं है। कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा, क्या क्या बकते रहते हैं। आगे तो गुरुओं आदि से शास्त्र सुनकर फिर उनको पांव पकड़ते थे, अभी बाबा ने तुमको हर बात से छुड़ाई दिया है। तुम जानते हो कि बाबा तो अभोक्ता है, असोचता है, उसको कोई मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है। फिर भी कोई को पांव पड़ने नहीं देते, बच्चों को गिरना होता है, ऐसे भी नहीं है, बच्चों को गिरना नहीं होता है, परंतु ये रसम चली आ रही है कि छोटे बड़ों का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में तो बच्चा वारिस बनता है बाप की मिल्कियत का। बाप कहते हैं कि ये बच्चा मेरा मालिक है, हमारी सारी जायदाद का मालिक है। मालिक को फिर नमस्ते करते हैं, बल बाप मालिक है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चे को ही कहेंगे, जो उनकी सारी मिल्कियत का मालिक बनते हैं। तो तुम बच्चे भी मालिक बनते हो तो तुमको ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मेरे पांव पड़ो, यह करो वह करो, नहीं। गोद में बच्चे आते हैं तो भी बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद करके फिर गोद में आना है। ऐसे नहीं करेंगे तो फिर पाप लग जाएगा। अब देखो बाप कितना खबरदार करते हैं, एक शिव बाबा को ही याद करना है। हम शिव बाबा की गोद में आते हैं, आत्मा कहती है मैं शिव बाबा की गोद लेती हूं, तो मनुष्य इन बातों में मुझते हैं। तुम तो जानते हो मां बाप गोद लेते हैं कि शिव बाबा है और इनसे अडॉप्ट करते हैं, तो ये मां हो गई। ये जानते हो कि तुमको वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, इसलिए उनकी ही याद में रहना है। क्यों कहते हैं उनकी याद में? इनके बाजू में ही तो बैठा है, बोलने वाला कहां बैठा है? इनके बाजू में बैठा है तो ऐसे क्यों कहते हैं उनकी याद में रहना है? इसका क्या कारण है कि भविष्य में वो पार्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो बाप जो बातें समझाते हैं उन बातों को धारण करना है। जो धारण करेंगे उनको रूप बसंत भी बनना है। रूप याद में रहने वाले को कहा जाता है और बसंत उनको कहा जाता है जिनसे ज्ञान की धारणा की खुशबुएं निकलती हों। तो योग में रहेंगे और ज्ञान धारण करते रहेंगे, दूसरों को कराते रहेंगे, तो तुम मेरे समान रूप बसंत बन जावेंगे। जब मेरे समान रूप बसंत बन जावेंगे तो मेरे साथ चल पड़ेंगे, तुम्हारी आत्मा में ज्ञान होगा, फिर स्वर्ग में आ जावेंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। नॉलेज की प्रारब्ध मिल जाती है फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाता है। तो ये गुह्य बातें हैं जो मुश्किल ही किसी की बुद्धि में बैठती हैं। बूढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि तुम एक को याद करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बाप को याद करो। तो तुम बाप के पास जाए फिर कृष्णपुरी में चली जावेंगी, ये तो कंसपुरी है। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस था, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्णपुरी में कंस कहां से आया? यह तो सब दंत कथाएं बना दी हैं। कहां की यादगार है? सतयुग में तो कृष्णपुरी होती है, वहां कंस का क्या काम? ये सब संगम युग की यादगार है। दिखाते हैं कृष्ण की मां को 8 बच्चे थे, ये तो गालियां दे दी हैं। मूर्ख बुद्धि क्या क्या बकते रहते हैं। कृष्ण को टोकरी में डाल करके भगाया, ये नहीं समझते हैं कि वो तो बुद्धि रूपी टोकरी है। कृष्ण तो बच्चा है, फिर दिखाते हैं कि नदी के पार ले गए। अब ये तो विषय वैसरणी नदी की बात है, ये सारा संसार विषय सागर है, फिर दिखाते हैं कि पांव छू करके नदी नीचे उतर गई। अब वहां तो ये बातें होती नहीं है, ये सब दंत कथाएं हैं, इनका अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम भागवत आदि शास्त्रों को कितना प्रेम से पढ़ते रहे, दिखाते हैं सीता को चुराया, फिर बाद में दिखाते हैं उनको वाल्मीकि ऋषि के पास छोड़ा। ये सब दंत कथाएं हैं, वहां तो ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां तो धर्म का उपकार था, अधर्म की बातें कैसे होंगी। वहां तो दिखाते हैं कि शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, शास्त्रों में दिखाया है। अब ये हद के शेर बकरी की बात है या ह्यूमन शेर बकरी की बात है? रावण राज्य तो अभी है नहीं, वो तुम जानते हो कि सतयुग में रावण कहां से आया। तो पहले ये निश्चय बैठना चाहिए, बाबा तो जो कुछ सुनाते हैं वो सच ही सुनाते हैं। शास्त्रों में तो भूसा भरा हुआ है, तो बाबा सार की बातें निकालते होंगे या सारा भूसा बैठे समझाते होंगे। बाबा तो सार की बातें बताते हैं, तो बाबा जो कुछ बताते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, बाकी जो कुछ भी पड़ा है वो झूठ, जिससे तुम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिलती जाती है, तो आगे तुमने जन्म जन्मांतर जो कुछ सुना वो सब भूलते जाना है। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि से मेरे साथ कोई भी नहीं मिल सकता, ये यज्ञ तप आदि झूठी बातें हैं। आत्मा तमो प्रधान बनने से फिर उन झूठी बातों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब इस सारी झूठी दुनिया को आग लगनी है, वो फिर होलिका बनाते हैं। उस होलिका की आग में कोकी पकाते हैं। है ये बात, धागा रह जाता है, तुम स्नेह के धागे में पिरोए जाते हो ना, तुम्हारा एक बाप का स्नेह का धागा है, तो तुम आत्माएं बच जाती हो, बाकी सारी दुनिया भंभोर को आग लग जाती है। है ये बात, शरीर सब जल जाते हैं, अर्थात देह अभिमानी जल जाते हैं, बाकी तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है, क्योंकि तुम आत्मा अभिमानी बनते हो ना। तो ये बेहद की बातें हैं, अभी तुम बच्चे तो समझ सकते हो कि सतयुग में तो इतने मनुष्य इतने धर्म होते नहीं है, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। तुम जानते हो भारत जैसा पवित्र खंड कोई देश नहीं होता। भारत सब धर्म वालों का यात्रा स्थान है, तीर्थ स्थान है। शिव बाबा सभी धर्म वालों में से चुन चुन करके पतितों को पावन बनाने आया है। उनका मंदिर बहुत ऊंचा था, जिस मंदिर को लूटा है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो तुम जानते हो कि हम तो काशी वास करेंगे, जहां शिव है वहां ही हम शरीर छोड़ेंगे। कहते हैं शिव काशी शिव काशी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 1965 की वाणी का तीसरा पेज। वहां काशी में बहुत साधु लोग जाकर के बैठते हैं। भक्ति मार्ग में देखा है ना, वाराणसी में कितने जाकर बैठते हैं। है कहां की यादगार है तुम बच्चों की यादगार? वास्तव में तुम सच्चे साधु हो, इंद्रियों की साधना करने वाले। वहां वाराणसी में सारा दिन यही बैठ गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगे। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो नहीं निकल सकती, तो किस बात की यादगार है? ये तो शिव के द्वारा ज्ञान गंगा निकलने की बात है। शिव के दर पर मरना भी पसंद करते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में दर पर आए हो। किसके दर पर आए हो? तुम सच्चे काशीवासी हो। उन्होंने तो पानी की नदी के ऊपर वाराणसी काशी दिखाई दी है। है तो चैतन्य गंगा की बात। तो कहां भी हो, परंतु शिव बाबा को तुम प्रैक्टिकल में याद करते हो। तुम सच्चे काशीवासी हो। जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाप है। उनको याद करते करते उनके पास चले जावेंगे। प्रैक्टिकल में चले जावेंगे या सिर्फ कहने की बात है? प्रैक्टिकल में काशीवासी बन जावेंगे ना, तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। ये भी जानते हो कि उनको उनके स्वरूप का निश्चय कराने वाला, उनका परिचय देने वाला कोई भी बाप नहीं है। उनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कोई बाप नहीं है। वो सबका बाप है। उनको समझाने वाला कोई भी टीचर नहीं है, और तो सबको समझाने वाले कोई न कोई टीचर होते हैं। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता है। रचना से रचना को फिर भल कोई भी हो, वर्षा तो नहीं मिल सकता। वर्षा किससे मिलता है? वर्षा तो सदैव रचयिता से रचना को मिलता है, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम ज्ञान सागर के पास आए हैं, हम गड्ढे गड़ीचियों के पास नहीं आए हैं, नदियों के ऊपर नहीं आए हैं, हम किसके पास आए हैं? हम ज्ञान सागर के पास आए हैं। तो ये ज्ञान सागर बाप ही वर्षा करते हैं। इस बरसात से तुम पावन बन रहे हो, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब चुक चुक करके अपने अपने धर्म में चले जावेंगे, अपने अपने सेक्शन में चले जावेंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, वहां भी अपने अपने सेक्शन हैं। यहां भी साकार झाड़ है, तो वहां है रुद्रमाला, यहां फिर है विष्णु की माला, फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती जाती हैं। कौन कौन सी बिरादरियां निकलती हैं? इस्लाम धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की, बौद्ध धर्म की, ये बिरादरियां निकलती हैं ना? तो ये बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा होता जाता है। अभी तो फिर साहब को वापस जाना है, फिर राज कौन करेंगे? सब वापस चले जावेंगे तो देवी देवता धर्म वालों को राज करना है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, विश्व के मालिक बन रहे हो, तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? है कि और धर्म वालों को तो और धर्म पिताएं पढ़ाते हैं, और हमको कौन पढ़ाता है? हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, पढ़ाए करके विश्व का मालिक बनाते हैं। कैसे विश्व का मालिक बनाते हैं? जहां यथा राजा तथा प्रजा, सब अपन को विश्व का मालिक समझते हैं। जैसे कोई कारखाना होता है तो बाप भी कहता है मेरा कारखाना, और बच्चे भी कहते हैं मेरा कारखाना। यथा राजा तथा प्रजा। तो भगवान हमको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? राजयोग पढ़ाते हैं। उस राजयोग से तुम बड़े से बड़े राजा बनते हो, और ज्ञान की बातें पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना देंगे। ये भी जानते हो कि सतयुग के सूर्यवंशी फिर त्रेता में चंद्रवंशी में आवेंगे। तो बाबा रोज समझाते हैं, रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल बनकर के सागर के पास आते हो भरने के लिए, भर करके फिर जाकर के बरसात करनी है। बरसेंगे नहीं तो फिर राजाई पद नहीं पावेंगे, फिर तुम प्रजा में चले जावेंगे। इसलिए बादलों को भर करके फिर क्या करना है? बरसात करनी है। तो कोशिश करके जितना हो सके बाप की याद में रहो और खूब बरसात करते रहो। तुम्हारे शास्त्रों में अथाह नाम है, अनेक गुरुओं को मानने वाले हैं, دہلی میں جا کر کے دیکھو جمنا کے کنٹے پر بہت مکان بنے ہوئے ہیں. کیا جب باپ آتے ہیں تو دہلی میں پہلے پہلے کہاں برسات کرتے ہیں؟ ایڈوانس انالیز کی برسات دہلی میں جمنا کے کنٹے پر بنے ہوئے سینٹرز میں ہوتی ہے. تو یہاں کی یادگار ہے جمنا کے کنٹے پر بہت مکان بنے ہوئے ہیں. مکان کہو قلعہ کہو سنگٹھن کی یادگار ہیں. وہاں سنیاسی لوگ بیٹھے رہتے ہیں, شیو ہم کہتے رہتے ہیں, اور ہیں یہ ابلائیں میلس, یہ فیمیلس جا کر کے ان کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں, ہے بھگوان کہتے رہتے ہیں. تو دیکھو کتنی ٹھگی لگی پڑی ہے. اب ان کو گورنمنٹ نہیں نکال سکتی. اس ٹھگی کو بند کرنے والا ایک ہی باپ ہے جو جمنا کے کنٹھے پر آتے ہیں. ستیگ میں تو کوئی بھی ٹھگی نہیں ہوتی.